بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. أعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها. اللهم صل على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى إطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المقدومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا سيدتنا ومولاتنا يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله، اشفعي لنا عند الله. لعن الله من ظلمك ومن قتلك لعنة أبد العابدين إلى قيام يوم الدين. پروردگار عالم سے اس توسل کے ساتھ دعا ہے کہ پروردگارہ ان مجالس کو، ان عبادات کو، خاص کر کے شب جمعہ بھی ہے، پروردگارہ اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرما اور دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے اور خاص کر جنہوں نے اس کو دام درہم سخنی آرگنائز کیا ہے تعاون کے ساتھ، پروردگارہ دنیا و آخرت میں ان کے لیے خیر و برکت اور عافیت و سلامتی عنایت فرما. ہم ایام فاطمیہ میں ہیں یا عشرہ فاطمیہ میں ہیں، اور موضوع آج یہ ہے کہ ہم اس دوسرے خطبے کو یا اس دوسری آفیشیل گفتگو کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرنے کی جسارت کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں جو آپ کی حیات طیب و طاہرہ میں دوسری، کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے عوامی خطاب یا پبلک سٹیٹمنٹ یا ایک کم سے کم ایک اجتماع کے اندر کی گئی ایک منفرد قسم کے حالات میں منفرد قسم کا بیان اور خطاب اور گفتگو ہے. حضور پاک کے تقریباً رحلت کے 50 دن گزرے ہیں اور گزرتے ہیں کہ آپ کی حیات طیبہ و طاہرہ کے وہ ایام شروع ہوتے ہیں جو سخت اور کٹھن ہیں، اور یہ سلسلہ آپ کی شہادت پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور انہی ایام کو ہم ایام فاطمیہ یا عشرہ فاطمیہ کہتے ہیں. شہادت کے بارے میں جو دو تاریخیں ہیں، ان دو تاریخوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے دو عشرے منائے جاتے ہیں بعض جگہوں پر، یا بعض جگہوں پر کسی ایک تاریخ کو پریفر کیا جاتا ہے. میں تاریخی اسناد اور اس کی کس قدر کون سی تاریخ زیادہ اتھنٹک ہے، کون سی کم ہے، اس بحث میں نہیں پڑتا. آپ جانتے ہیں مصائب میں بارہا مرتبہ سنا ہے کہ مولا کائنات سے جبری بیعت کی کوشش کے لیے آپ کے گھر پر حملہ ہوتا ہے. ہم حملے کا لفظ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ جو لوگ آئے تھے وہ ڈائلاگ کے لیے نہیں آئے تھے، ان کے ارادے بات چیت نہیں تھی، ان کے سوچ میں، ان کے ارادوں میں اور ان کے اقدام میں جو آپشن ہی نظر آیا تھا وہ دھمکی، دھونس اور انتہائی ایسا سلوک تھا جو کم سے کم اس گرانے اور اس با عظمت گرانے کے ساتھ کسی بھی مسلمان کے لیے ناقابل قبول تھا. اور آپ کے گھر پر حملے میں آپ زخمی ہو جاتی ہیں. دیوار و در کے درمیان آنے کے سبب آپ زخمی ہوتی ہیں، آپ کے پیٹ میں موجود بچہ شہید ہو جاتا ہے. اس کے بعد جب مولا علیہ السلام کو جبری طور پر لے جانے کی کوشش ہوتی ہے تو اس میں دفاع کے لیے آتی ہیں امامت و ولایت کے، اور اس دفاع کے درمیان مزید آپ پر تشدد ہوتا ہے، آپ کو مزید فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے، آپ کے بازو پر تازیانے لگتے ہیں، آپ کے پہلو پر تلوار کے خول سے، نیام سے، جو کہ بڑی سخت ہوتی ہے یہ نیام، اس سے مارا جاتا ہے. کہ جیسا کہ آپ نے مصائب میں سنا ہوگا کہ یہ زخم आपने छुपाया हुआ था हत्ता मौलाए कायनात, और गुस्ल के वक्त इसका इंकशाफ होता है मौला के सामने। और यूं आप जो है बीमार हो जाती हैं इन जख्मों से, और ये खबर पूरे अहले मदीना में फैल जाती है कि आप बीमार हैं। लिहाजा बहुत से लोग इयादत के लिए आते हैं, बहुत सी खवातीन, सरकर्दा खवातीन और अफराद इयादत के लिए आते हैं, और इन इयादत के लिए आने वालों में से एक जनाब उम्मे सलमा है। और दिलचस्प बात यह है कि जो भी इयादत के लिए आता है उनके सामने क्या गुफ्तगू होती है, सैदे कायनात की तरफ से मौजू सुखन क्या होता है, क्या आप अपनी तकलीफ को बयान करती हैं कि किस किस्म का जिस्मानी तकलीफ आप महसूस कर रही हैं, आप उस वाकये को बयान करती हैं, या जो है आपका ज्यादातर तवज्जो और फोकस कुछ और अहम इश्यूज हैं जो आपको तकलीफ दे रहे हैं, उस फिजिकल तकलीफ से ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं उसको जो है आप बयान करती हैं। उम्मे सलमा जब पहुंचती हैं तो जो एक अरबों में तरीका था कि कैफा असबहती, आपकी सुबह कैसी हुई, मतलब ये कि आपकी तबीयत कैसी है, उम्मे सलमा आके कहती हैं ए खुदा के रसूल की बेटी आपकी तबीयत कैसी है। जनाब सैदा कायनात फरमाती हैं मैं अपने आप को गम और परेशानी जैसी दो हालतों के दरमियान पा रही हूं, मेरा गम बात की जुदाई का है और मेरी परेशानी वसी और जानशीन रसूलुल्लाह पर होने वाले जुल्म के सबब है, खुदा की कसम है उन्होंने इमामत के तकद्दस को पामाल किया है और उसकी बेहरमती की है, उन्होंने अमीरुल मोमिनीन की इमामत को गसब कर लिया है जो कि कुरान की खुली और वाज़े आयात और खुदा के हुक्म के मुताबिक अमीरुल मोमिनीन का ये हक साबित था जिसकी वजाहत रसूलुल्लाह कर चुके थे। फिर फरमाती हैं इसकी वजह वो कीना है जो इनके दिलों में है जो बद्र ओहद से चला आ रहा है। अल्लाहु अकबर। आप इज़्मत सय्यदा को देखें कि अपने जख्मी पहलू ताजियाने से सूजे हुए बाजुओं को और अपने सिख्तशुदा बच्चे शहीद मोहसिन के बारे में गुफ्तगू के बजाय आप उसी दर्द को बयान करती हैं जो कि उम्मत का मसला है, उम्मत के कयामत तक का मसला है, उम्मत के गलत रास्ते का मसला है, गलत कियादत के इंतखाब का मसला है। और ये दर्द आला ईमानी और आला रूहानी और इंसानी सिफात के तौर पर गिना जाता है रिवायात और हादीस और कुरान मजीद में। इंसान की इंसानियत का जो पहलू बयान होता है तो एज ए एग्जाम्पल जो चीजें बयान करती है उसमें सबसे मोस्ट हाइस्ट जो चीज होती है वो यही दर्द है, ईमानी दर्द, रूहानी दर्द, एहसास, माशरे का एहसास, दूसरों का एहसास, दूसरों के गलत रास्ते और गलत पटरी पे जाने का एहसास। अंबिया अलैहिस्सलाम में यही दर्द था इसीलिए वो नबी थे। उसके बाद अंसार और मुहाजरीन की खवातीन आती हैं, बहुत सारे और अफराद का भी तस्करा है, बाज खवातीन का तस्करा भी है, मैं नहीं चाहता हूं कि आपका वक्त ले लूं और उस जो है डिटेल में चला जाऊं, बराह रास्त हम चलते हैं उस गुफ्तगू की तरफ। अंसार और मुहाजरीन की कुछ खवातीन आती हैं और ये खवातीन अदद के एतबार से ज्यादा हैं और नुमाइंदगी के एतबार से तकरीबन बहुत सारे कबाइल इसके अंदर मौजूद हैं, क्योंकि कबाइली जो एक खू है, कबाइल की जो अटैचमेंट है वो अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, अभी तक वो कबाइली सोच अभी भी मौजूद है। लिहाजा मस्जिद नबवी के खुतबे के बाद इज्तिमाई तबलीगी सियासी जिद्दोजहद का तसलसल ये खुतबा है। कन्नहू मस्जिद नबवी में जो खुतबे फदक के नाम से मशहूर हुआ आपका खताब था, उसके बाद ये खताब उसी खताब का एक तसलसल है। आप बिस्तर बीमारी पर हैं लेकिन आपने अपनी जिद्दोजहद नहीं छोड़ी है, आप हर उस जायज वसीले को बरोएकार ला रही हैं जिससे फिक्री, सियासी और नजरियाती और अकीदती इनराफात को नुमायां करके बयान किया जाए, उसे उजागर किया जाए और उसकी इसलाह की तरफ मुतवज्जे किया जाए। आपका जो यहां पर ख्वातीन से मुखातब होकर दिया गया खुतबा गहरी दूर अंदेशी और बसीरत की ईमान अफरोज तालीम और उस वक़्त के इज्तिमाई सियासी हालात का इतना ज़बरदस्त तज़िया और सही डायरेक्शन दे रहा है कि अगर कोई चलता तो शायद दुनिया व आखरत में उसकी नजात इसके अंदर मुसमर है। आप इस खुतबे के अंदर जिन बातों को तज़किरा करती हैं, चार या पांच ऐसे मरकजी उनवान हैं जिस पर आपने फोकस किया हुआ था इस मुख्तसर खुतबे के अंदर। ये खुतबा मस्जिद नबवी के खुतबे से कदरे मुख्तसर है। पहला अहम नुक्ता जो बयान फरमाती है वो फरमाती है कि उम्मत पैगंबर बदतरीन किस्म के बहरान और नुकसान उठाने जा रही है और नुकसान से दो चार होने जा रही है। इस वक्त खुद उम्मत पैगंबर अपना नुकसान कर रही है और फिर इस पहलू को कुरान मजीद की आयात की तिलावत और फिर उसकी तफसीर और शरा और तशरीह के जरिए से बनवान दलील और एविडेंस के तौर पर बयान करती हैं और उसके बाद उम्मत के मुस्तकबिल और फ्यूचर के हालात का तज्जिया करती हैं कि क्या इस सिचुएशन को, अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो इन गलत फैसलों के आइंदा मुस्तकबिल में क्या नतीजे निकलने वाले हैं, इसके उन खतरात और उन हालात को अभी से अलर्ट करती हैं, होशियार करती हैं। खुतबे का आगाज भी हम्द सनाए इलाही से ही होता है। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि के ऊपर दुरूद सलाम से होता है। उसके बाद जो खुतबा नकल किया है उसमें ये जुमले आए हैं, फहमदतिल्लाहि वसलत अला अबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम थुम्म कालत, अल्लाह की हम्द सना की, हुजूर पाक पर दुरूद सलाम भेजा, उसके बाद फरमाया أصبحت والله آيفة لدنيا كنا قالية لرجال كنا, क्योंकि ख्वातीन हैं तो जमीर भी जो अल्फाज भी इस्तेमाल किए सिर्फ ख्वातीन के हैं। फरमाती हैं खुदा की कसम मुझे अब तुमसे तुम्हारी जिंदगी से कोई गरज नहीं है, मैं तुम्हारे मर्दों से सख्त नाराज हूं, मैंने उन्हें पूरी तरह आजमाया फिर उन्हें अपनी यानी विलायत से दूर कर दिया। बड़ा सख्त जुमला है। फरमाती है मैंने खुद से दूर कर दिया, खुद से दूर कर दिया मतलब अपनी विलायत से, नजात की कश्ती से, इमामत से, क्योंकि वो खुद दूर हो चुके हैं। मैंने पहले उनकी आजमाइश की मस्जिद के अंदर खुतबा देकर डोर टू डोर जाके दो दफा जाकर, लेकिन देखा कि ये इस लायक और काबिल ही नहीं है तो कह रहे कि मैंने उन्हें खुद से दूर कर दिया या अपनी विलायत से दूर कर दिया। कायनात की सईदा के ये जुमले हैं। फिर फरमाती हैं तुम्हारे मर्दों का ये हाल है कि उनकी हिम्मत कमजोर हो गई है, उनकी राय में वो पहली जैसी पुख्तगी नहीं रही। पहले वो कोई राय देते थे, कोई इनपुट देते थे तो बड़ी सॉलिड मजबूत किस्म की होती थी, अब वो पुख्तगी भी नहीं है और अब ना वो मजबूती है। वो अजीब व गरीब किस्म के बहाने करते हैं, बच्चगाना बातें हैं, मिचोर इंसानों वाली बातें नहीं रही हैं। हक के रास्ते के सामने आकर वो देख रहे हैं कि अगर हम हक के रास्ते का साथ देंगे तो मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे, लिहाजा वो बचगाना दलाइल दे रहे हैं। दरवाजे पर मैं गई तो भी बचगाना दलाइल थे, मस्जिद में भी जब बात की तो रो रहे थे लेकिन बचगाना दलाइल दिया, उसके बाद अपने जो एक्सक्यूज पेश किए। फिर फरमाती उन पर अफसोस है कि कैसे उन्होंने खिलाफत को रिसालत के मजबूत मरकज और नबुव्वत की मुस्तहकम असास वही के नुजूल की जगह से, कितने खूबसूरत जुमले इरशाद फरमाया, कहा कि उम्मत की क़यादत को रिसालत के जो मजबूत मरकज है यानी इमामत विलायत, नबुव्वत की मुस्तहकम असास और बुनियाद है, बेस है, मजबूत बेस है नबुव्वत की, क्या इमामत विलायत, वही के नुजूल की जगह से और उस शख्सियत से जो दुनिया और दीन के मसाइल का माहिर है, एक्सपर्ट है, उससे छीन लिया और किसी दूसरी जगह मुंतकल कर दिया। उसके बाद अफसोस के साथ फरमाती हैं, रावी जो नकल करते हैं वो कहते हैं कि जनाब सय्यदा जब ये जुमले कह रही थी तो अंसार और मुहाजिरीन की खवातीन सर झुकाए रो रही थी और उसके बाद जनाब सय्यदा ने आह कहा तो ख्वातीन ने भी सर उठाया कि शायद बदन के तकलीफ से आह कर रही हैं, लेकिन उससे बड़ी तकलीफ का एहसास जनाब सैदा को था। फरमाती हैं, अला ज़ालिका हुवल खुसरान मुबीन, आगाह रहो जो कुछ तुम लोगों ने किया है, तुम लोगों का ये जो गैर संजीदा इकदाम है, ये सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा खुसरान है। उसके बाद एक सवाल करती हैं, वमल्लज़ी नक़मु मिन अबिल हसन, भाई आखिर बताओ तो सही ना, अबुल हसन के साथ ये इंतकामी सुलूक क्यों? वमल्लज़ी नक़मु मिन अबिल हसन, नक़िमु वही नक़मु उसी फैमिली इंतकाम की फैमिली से है, अबुल हसन के साथ इंतकामी सुलूक क्यों, यानी क्यों अली के साथ ऐसा सुलूक किया जा रहा है जैसे कि किसी चीज का इंतकाम लिया जा रहा हो। फिर फरमाती हैं, खुदा की कसम, अबुल हसन से उस तलवारबाजी का इंतकाम लिया जा रहा है जो बातिल पर टूट पड़ रही थी। खुदा की कसम, अगर अबुल हसन के पास, अबुल हसन के पास खिलाफत होगी तो वो लोगों में शफाफ साफ हक के रास्ते की जानिब रहनुमाई करेंगे, यानी लोगों को साफ तौर पर, वाजे तौर पर, शफाफ तौर पर हक का रास्ता दिखाएंगे, कंफ्यूजन के शिकार नहीं होंगे। ये जुमले सुनने को नहीं मिलेंगे कि लौला अली लहलक, ये जुमले सुनने को नहीं मिलेंगे कि मैंने यहां पर गलती की, मैंने तुम्हें गलत डायरेक्शन पर डाल दिया। वाजे रास्ता होगा, शफाफ रास्ता होगा। और अगर खिलाफत अली के हाथ में हो तो लोगों को सही अंदाजे से वो समझा सकेंगे कि सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, सही दीन की फिक्र कौन सी है, दीन के नाम पर गलत फिक्र कौन सी है। जो लोग नाहजुल बलागा के दर्स में रहे हैं, नाहजुल बलागा के खतूत की शरह में रहे हैं, मालिक अश्तर वाले खत के जुमलों को याद कीजिएगा कि क्या फरमाया था मालिक अश्तर को। जिनाब सैयदा पहले बता रही है, अगर आप मौला के हाथ में देंगे तो दीन के नाम पर गलत तशरी नहीं होगी, सच्चे दीन को कैदी नहीं बनाया जाएगा, दीन के नाम पर अपनी ख्वाहिशात की तकमील नहीं होगी अगर अली के हाथ में खिलाफत होगी। ये ख्वातीन को समझा रही है। फिर फरमाती है, देखें बैतुल माल और खजाने को अली कभी खुद पर खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि अली की सीरत और आदत तो ये है कि वो बस इतना लेते हैं कि इतना पानी पीते हैं कि बस प्यास बुझे, इतना खाते हैं कि बस भूख मिटती रहे, उससे ज्यादा जखीरा अंदोजी करने का और बैंक बैलेंस बढ़ाने का और प्रॉपर्टीज बनाने का तो कोई तसव्वुर अली के पास नहीं। मतलब क्या है, तुम्हारे खजाने के इससे अच्छे अमीन और अमानतदार हो ही नहीं सकते, इनको कोई दिलचस्पी नहीं है बैतुल माल के ऊपर और खजाने के ऊपर। जाहिर है ये पस मंजर, ये बातें करना जरूरी है क्योंकि फदक को फौरन छीन लिया और जनाब सईदा उस फदक के छीनने के बाद उसी मसले को एक जरिए के तौर पर, एक जायज वसीले के तौर पर जो है इस मूवमेंट को आगाज कर चुकी है। लिहाजा लोग ना समझें कि अगर फदक दिया जाएगा तो जनाब सईदा के सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे और सारे मसाइल का हल हो जाएगा, और खिलाफत के मामले में तो जनाब सईदा खामोशी अख्तियार करेंगी और कोई एतराज उन्हें खलीफा के ऊपर नहीं होगा। लिहाजा एक एक पहलू की तरफ इशारा कर रही हैं कि वाजह रहे मसला फिदक का नहीं, मेरी नाराजगी बागे फिदक के सिर्फ छीनने की वजह से नहीं है, उससे बड़ा जो डाका पड़ा है उसके ऊपर है, आगे जो तबाही आ रही है उसके ऊपर है। हकीकी कयादत और फर्जी और जाली कयादत में जो फर्क है, हकीकी और खरे और खोटे की जो शिनाख्त है, उसे वाजे कर रही है इन अल्फाज के जरिए से। उसके बाद मुस्तकबिल के बारे में खुले अल्फाज में बताती हैं कि आने वाला मुस्तकबिल क्या है। आज की जबान में समझने के लिए कहें तो मुस्तकबिल का 100% सही तज्जिया और उसके नताइज को वक्त से पहले बयान करती हैं। बसीरत का मतलब भी यही है। सैदे कायनात ने, खुद सैदे कायनात अपनी मकाम मंजिलत एक अलग मलकूती है, लेकिन जो खवातीन है उनको एजुकेट करना है, सोसाइटी को एजुकेट करना, उनको बाबसीर बनाना है, तो उनके सामने जिस अंदाज से एक तजिए के तौर पर एक बेहतरीन अंदाज से उस मसले को हल करके उसके जुजियात को, आने वाले हालात को, गुजरे हुए हालात को, जो कुछ अभी हो रहा है उसे, और किस डायरेक्शन पर जा रहे हैं उसे, बड़े खूबसूरत तरीके से उसे एजुकेट कर रही है ताकि वो दूसरों को भी बता सके, ताकि ताकि तारीख में हम और आप जैसे लोग भी इस सीरत तय्यब व ताहिरा से इस्तेफादा कर सकें, क्योंकि जनाब सईद कायनात की सीरत तय्यब व ताहिरा कयामत तक तमाम इंसानों के लिए हुज्जत है, दलील है, दीन है, शरीयत है। फरमाती हैं कि अब जबकि आप लोगों ने अपना मकसद हासिल कर लिया है तो ठीक है, अपनी दुनिया के मजे ले लो, मजे लेते रहो, लेकिन ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यकीन जानो फितने तुम्हारे इंतजार में हैं, काट खाने वाली तलवारें आने वाली हैं, और ऐसे जालिमों का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर आने वाला है, ऐसे जालिम तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होने वाले हैं जो ज्यादा से ज्यादा जुल्म और जाहिरियत जारियत को अपनी रविश बनाएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है जारह बनकर सामने आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जालिम बनकर तुम्हारे सामने आएंगे। और ये भी याद रखो, अभी जो है बास लोगों का ये इल्जाम था कि आप जो है इंतशार न फैलाएं, इससे तफरीका पड़ जाएगा, इससे इस वक्त जो है हालात खराब हो जाएंगे। यकीनन इसका खतरा था, तभी तो मौलाए कायनात ने इतना सब्र का पहाड़ जो है सब्र के पहाड़ से जाकर टेक लगाया, तो मौलाए कायनात ने सब्र की इंतहा दिखा दी थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो सच्चाई है, जो हक है, उस पर पर्दा पड़ा रहने दिया जाए, उसके ऊपर गिर्द गुबार पड़ा रहने दिया जाए कि तारीख में पता ही नहीं चले कि हक कहाँ था, बातिल कहाँ था, सच कहाँ था, गलत कहाँ था। फरमाती है इंतशार और अफरा तफरी होगी और जालिम हुकूमत कायम होगी, जो तुम्हारा माल उड़ाते रहेंगे, तुम्हारे बैतुल माल को उड़ाते रहेंगे, वो तुम्हारी फसलें काटेंगे। मतलब क्या, तुम बोओगे, तुम मेहनत करोगे, तुम जो है तकलीफ उठाओगे, खून पसीना बहाओगे, लेकिन ये फसल जब पक कर तैयार हो जाएगी तो इसे काटने वाला वो जालिम हुक्मरान होगा, वो जालिम और मुसल्लत शुदा जाबिर हुकूमत होगी जो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल कर, क्योंकि तुम लोगों ने खुद ये रास्ता चुना है। फिर फरमाती हैं, बस तुम पर अफसोस और अफसोस हो, तुमने क्या से क्या कर दिया, तुमने हक को सच के रास्ते को खो दिया, और क्या हम तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं अगर तुम ना चाहो। अल्लाह अकबर। एक सवाल है, ये जुमले जो आपने कल के खुतबे में भी मुलाहिजा की है, हमने खुतबे के उस तौहीदी पहलू को डिस्कस नहीं किया, हमने खुतबे के अंदर मौजूद इरफानी पहलू को डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम एक तसल्लुस के साथ एक मौजू को लेके जाना चाह रहे थे। लेकिन जो कुछ कल हमने सुना, जो कुछ हम अभी सुन रहे हैं, क्या ये कोई एक्सपायरी डेट रखते हैं? क्या इनमें कोई ऐसी चीज है जिसको हम कहें माजी में हुआ था, तारीख है? जैसे न्यूज़पेपर होता है, कल का न्यूज़पेपर आज मेरे किसी काम का नहीं रहा क्योंकि फ्रेश न्यूज नहीं है उसमें, क्या ये कोई इस तरह की एक्सपायरी डेट रखते हैं ये जुमले? क्या आज हमारी हर सोसाइटी के लिए मशाले राह नहीं है? क्या कमोबेश आज हम इस तरह की सूरत हाल से दो चार नहीं होते? हमारे बाद की जनरेशन इस तरह की सूरत हाल का सामना उन्हें नहीं करना पड़ेगा? हमसे पहलू वालों ने जनाब सईदा की शहादत के बाद क्या ऐसी सिचुएशन को फेस नहीं किया? तो ये जुमले क्या उनके लिए मशाले राह नहीं है? जब फरमाया कयाम कयामत तक आपकी सीरत तय्यब व ताहिर आप लोगों के लिए नमूने अमल है, तो किस माने में, किस अंदाज से हम ले लेंगे? यह सब कुछ नमूने अमल है। तुमने हक को और सच के रास्ते को खो दिया है, क्या हम तुम्हें राह रास्त पर लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं अगर तुम खुद ना चाहो? अगर तुम खुद सच के रास्ते पर नहीं आना चाहो तो जबर का कोई निजाम तो मौजूद नहीं है। नबियों को खुदा ने कोई जबरी निजाम नहीं दिया, कुरान मजीद में कोई ऐसा जबरी निजाम मौजूद नहीं है कि इंसान के दिलों के अंदर दाखिल होकर उसके ईमान के अंदर तब्दीली लाई जाए। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा है, क्या ये आज हम और आपके लिए मशाले राह नहीं है? बहुत सी सोसाइटीज के लिए मशाले राह नहीं है। इस खताब के बाद जिसके हमने कुछ अहम और सेलेक्टिव नुकात जो है आपकी खदमत में पेश किए, एक रिवायत है, ये रिवायत बिहारुल अनवार में भी है और किताब एहतिजाज तबरसी में भी है, और रावी सोयद बिन गफला की जानिब से ये रिवायत है कि मुहाजिरों अंसार की जो खवातीन थी जब उन्होंने इस खुतबे को सुना, सैयदए कायनात के फिर से उस इस्तगासे को सुन लिया, तो बड़ी माजरत और माफिया मांगती हुई सैयदए कायनात से उठी और हर एक की जबान पर यह था, हमारे मर्दों ने आपके साथ बेखुदा रसूल जादी, हमारे मर्दों ने आपके हक में अच्छा नहीं किया, हमें तो इन चीजों का पता नहीं था। खैर, उनकी ये माजरत, जैसे कहते हैं ना, उजर बतरस गुनाह। उसके बाद कहने लगी कि हे रसूल जादी, हम अपने घरों को जाएंगे और अपने मर्दों से ये सारी बातें जो आपने फरमाई है उनके सामने पेश करेंगे और हालात को बदलेंगे। हम अपने मर्दों के साथ आपके दरवाजे पर आएंगे, हम अपने मर्दों के साथ आएंगी, मौलाए कायनात के हाथ में बेहद करेंगी और जो है बाजी पलट जाएगी, हालात बदलेंगे, बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। ये खवातीन चली जाती हैं घरों में, बहुत सी खवातीन या बहुत से मर्द हजरात रसूल जादी की इन बातों को सुनने के बाद दरवाजे पर तशरीफ लाते हैं और दरवाजे पर आ जाते हैं। दरवाजे पर आने के बाद वही बहाना, वही जुमला जो गुनाह के ऊपर गुनाह है और गुनाह से पहले गुनाह से ज्यादा बदतर गुनाह है, वही जुमले जो कि दरवाजे में कहे गए थे जब डोर टू डोर कंपेन चलाई जा रही थी, वही जुमले कहते हैं, ए सैयदतुल निसाइल आलमीन, अगर अबुल हसन ने फलां की बेइज्जत करने से पहले हम पर खुद को तजवीज किया होता तो हम उन्हें छोड़कर किसी और के पास बिल्कुल भी नहीं जाते। अल्लाहु अकबर। ये सुनने के बाद जिनाब सय्यदा उनकी सोच, अकल और समझदारी पर अफसोस करते हुए मजीद दुख व अलम और अंदोह के साथ काफी नाराजगी के आलम में कहती हैं, इलैकुम अन्नी फला उज़्रा बादा तअज़ीरिकुम वला अम्रा बादा तक़सीरिकुम, मुझसे दूर चले जाओ, यहां से उठ के निकल जाओ, चले जाओ, मुझसे दूर चले जाओ, तुम्हारे झूठे बहानों के बाद कोई माजरत कबूल नहीं है, तुम्हारी इस वाज़े वाशगाफ खुली गलती और गुनाह के बाद अब कोई रास्ता बचा नहीं है। अजीजो, ये था वो दूसरा खताब सैयदए कायनात का जो महाजरीनों अंसार की खवातीन से आपने अपने बेत शरीफ में, जब वो अयादत के लिए आई थी, आपकी खबर लेने आई थी कि आप जख्मी हैं, तो उस वक्त इरशाद फरमाया। आपने देखा कि उसके बाद जवाब क्या था लोगों का। तीन जमादानी को मगरिब के बाद सैयदतुल आलमीन रहमतुलिल आलमीन से जा मिली। आपकी शहादत की असल वजह दर व दीवार से जख्मी होना है। छठे इमाम से यह रिवायत है, इस रिवायत के मुताबिक छठे इमाम फरमाते हैं, आपकी शहादत कुनफुस नाम के उस मलऊन ने, जो गिलाफ या नियाम, तलवार के नियाम से आपके पहलू पर मारा था, उसकी वजह से हुई है। और छठे इमाम ये भी फरमाते हैं कि मोहसिन शहीद हुआ उसी वजह से। और इसके बाद आप जो तकलीफ आपने गुजारी बीमारी के आलम में, और इसी जर्ब की वजह से आप जो है शहीद हो गई। ये छठे इमाम की एक रिवायत है। अगर इन तमाम रिवायात को हम इकट्ठा कर लें तो मालूम होता है कि सैयदए कायनात के ऊपर एक से कई बार तशद्दुद हुआ और हर तशद्दुद ने आपकी शहादत के लिए ग्राउंड फराहम कर दिया। आपके जसद ताहिर अतहर को इस तरह जो है मजरूह कर दिया था कि नतीजे में आप शहीद हो गई और आपकी शहादत में कोई एक शख्स नहीं बल्कि एक गुरोह था। शायद यही वजह है कि मौलाए कायनात जब आपको दफन कर रहे थे तो अल्लाह के हबीब से मुखातब होते हुए एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, सतुनब्बिउ इब्नति कया रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल, ये आपकी बेटी हैं जो आपको खबर देंगी और बताएंगी कि क्या हुआ आपके बाद। फिर फरमाते हैं, वतदाफुरल उम्मति अला हस्मिहा, ऐ अल्लाह के रसूल, آپ کی بیٹی کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے، اسے مارنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے تھے، سب مل کر پلان کر چکے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گروہ آپ کا قاتل ہے، نہ ایک فرد، ایک مجموعہ ہے۔ ایک اکیلی کائنات کی سیدہ خاتون کے اوپر حملہ کرنے والے ایک نہیں، بہت سارے نامرد تھے جنہوں نے مل کر جو ہے آپ کو شہید کر دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ عباس ابن عبد المطلب جناب سیدہ کے پاس آتے ہیں، آخری اوقات ہیں، آخری ایام ہیں سیدہ کائنات کی، جو ضربت، جو ضرب آپ کو لگی ہے اس سے تکلیف ہے کہ بڑھتی جا رہی ہے اور نقاہت میں اضافہ ہو چکا ہے۔ جیسے ہمارے برادر مرثیے میں پڑھ رہے تھے کہ 18 سال کی عمر میں آپ ضعیفہ دکھنے لگی ہیں، اس دوران آپ نے وصیتیں کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی وصیتیں دو قسم کی ہیں، ایک وہ وصیتیں ہیں جو جن کو ہم کہہ سکتے ہیں مالی وصیتیں ہیں، مالی سے مراد وہ تھوڑے بہت سے کچھ اموال اور پراپرٹیز تھیں جو آپ کو اپنے بابا پیغمبر خدا سے ملا تھا، اور آپ نے یہ ساری پراپرٹیاں اللہ کے راستے میں وقف کر دی تھیں۔ یہ روایت ہے عباس ابن عبد المطلب سے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ سیدہ کائنات اپنے آخری ایام کو گزار رہی ہیں، تو جناب سیدہ کائنات کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آپ کو بابا سے جو کچھ ملا ہے اگر ہو سکے تو اس میں سے فلاں وہ زمین کا ٹکڑا اگر آپ مجھے وقف کر دیں تو میں چاہتا ہوں کہ مدینے کے مہمانوں کی پذیرائی میں کام آ سکے، جو آپ کے بابا کے روزے کی زیارت کے لیے آنے والے زائرین کے۔ جناب سیدہ فرماتی ہیں، عباس تم نے دیر کر، سب کچھ میں دے چکی ہوں، میں وقف کر چکی ہوں۔ دوسرا جو وصیت نامہ ہے جو تحریری شکل میں بھی ہے، اور اسی وصیت نامے کے بہت سے اقتباسات یا اسی وصیت نامے کی کچھ وضاحتیں زبانی طور پر بھی آپ نے مولا کائنات سے فرمائی ہے، اور دیگر جو ہے اسماء بنت اس کو یا دیگر جو ہے افراد نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ جس میں اس وصیت نامے کے اندر فرماتی ہیں، قالت یا اب الحسن لم يبقى لي الا رمکن، اے اب الحسن دیکھیں اب مجھ میں کوئی زیادہ جان بچی نہیں ہے، اب زہرا جو ہے اپنے بستر سے ہل بھی نہیں سکتی ہے، لم يبقى لي الا رمکن من الحیات وحان زمان الرحیل، کہنے کی زندگی کی ڈور ہے کہ بہت مختصر ہو چکی ہے اور اب سفر کے آغاز کرنے کا وقت ہو چکا ہے، والوداع فاستمع کلامی، دیکھیں ودا سے پہلے میرے ان چند جملوں کو جو ہے اچھی طرح سن لیجئے، فَإِنَّكَ لَا تَسْمَعُ بَعْدَ ذَلِكَ الصَّوْتُ فَاطِمَةً، فرماتی ہے کہ ابو الحسن میری ان باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ کچھ دیر کے بعد پھر آپ کو فاطمہ کی آواز سنائی نہیں دے گی۔ اسی کا یا ابن حسن، ابن حسن میری وصیت ہے آپ کے لیے، اللہ تنسانی وتزورنی بعد، فرماتی ہیں کہ دیکھیں میرے مرنے کے بعد، میری شہادت کے بعد مجھے بھول نہ جانا، ہمیشہ میری قبر کی زیارت کے لیے آ جانا، اور جب مجھے غسل و کفن دے دینا تو میرے اوپر قرآن پڑھ لینا دفن سے پہلے۔ پھر فرماتی ہیں، اذا انا مت فدفنی لیلا ولا تودن بی احدا من فلان بفلان، دیکھیں میرے مرنے کے بعد مجھے جو ہے رات کو دفنا دینا، اور خبردار میرے جنازے میں وہ دو افراد جنہوں نے میرے حق میں زیادتی کی ہیں ان کو تو بالکل بھی آنے نہیں دینا، ان کو بالکل بھی شریک ہونے نہ دینا، کیونکہ میں ان سے ناراض ہوں۔ عزیزو، رات کو مغرب کے بعد بی بی کی شہادت کی خبر مدینے کے اندر پھیلنے لگ گئی۔ اس خبر کے پھیلنے کے بعد لوگ جمع ہونے لگ گئے مولا کے دروازے کے سامنے، کچھ لوگوں نے نماز جنازے کے غرض سے آگئے، کچھ تبرکن و تیممن آگئے۔ جب مولا اور مولا کے مقربین و مخلصین اصحاب نے یہ منظر دیکھا تو جناب ابو ذر سے مولا نے فرمایا کہ آپ چلے جائیں اور ان لوگوں سے جا کر گفتگو کریں۔ جناب ابو ذر باہر آتے ہیں اور کہتے ہیں، कि देखें बात दरअसल ये है कि जनाजे में अभी ताखीर होगी, लिहाजा आप लोग अपने घरों को चले जाएं। लोग वहां से वापस चले जाते हैं कि जनाजे में अभी ताखीर है। रसूलुल्लाह के चचा इब्ने अब्बास उसी दौरान जो है मौला अली अलैहि सलाम से अर्ज करते हैं आकर कि क्या मुहाजरीन व अंसार को नमाज के लिए इकट्ठा किया जाए, क्योंकि दीनी जो सकाफत है उसके अंदर लोगों को ज्यादा से ज्यादा जनाजे में शरीक करना एक मुस्तहसन अमल के तौर पर आम हालात में करार दिया गया है। उस वक्त मौला अमीनुल मोमिन अलैहि सलाम फरमाते हैं, रसूल की बेटी ने वसीयत की है, नमाज जनाजा और तदफीन में किसी को शामिल न होने दिया जाए, इसे पोशीदा रखा जाए, उन लोगों को बिल्कुल भी जनाजे में शरीक होने न दिया जाए जिन्होंने जुल्म किया है और आपके हक को गसब किया है। अजीजो तारीख ने, आप मसाइब सुनते रहते हैं लेकिन इन तारीखी वाकयात को भी साथ साथ तारीखी तरीके से सुनते चले जाएं। अजीजो जनाजे में कौन शरीक था? ये तो वाज़ह है कि खानदान ने इस्मत व तहारत मौजूद थे, मौलाए कायनात हसनैन अलैहिस्सलाम, इसके अलावा अकील इब्न अबी तालिब, अब्बास इब्न अब्दुल मुतलिब, अम्मार इब्न यासिर, मिकदाद इब्न अस्वद और जुबेर इब्न आवान। अगरचि बाद में उसका किरदार बहुत नेगेटिव रहा है लेकिन इस वक्त कदरे पॉजिटिव है, अबू जर गफ्फारी और सलमान फारसी। हमें नहीं मालूम, हम नहीं जानते हैं कि रसूल की बेटी की तदफीन कहाँ पर हुई, घर पर हुई, रोजे रसूल पर हुई, या अकील इब्न अबी तालिब के घर पर हुई, या बकी में हुई, हमें नहीं मालूम। कहा जाता है कि घर पर हुई, उसी घर पर जो आज मौजूदा मस्जिद नबवी का हिस्सा बन चुका है। आयतुल्ला मराशी नजफी जो कि इल्मुल अंसाब के माहिर थे, उन्होंने तारीखी एतबार से बहुत तहकीक की, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हर मोड़ पे बलाखरा जब एंड पे पहुंचते थे तो कंफ्यूजन बरकरार रहती थी। आलम मुराकबा में चले गए और मुकाशिफे के लिए खुदा से इल्तिजा की। ख्वाब में आयतुल्ला मराशी नजफी को लिए ये कहा गया, क्या आयतुल्ला मराशी नजफी, रसूल जादी के कब्र की तलाश करना छोड़ दो, ये खुदा के राजू में से एक राज है, ये राज इसी तरह मख्फी रहेगा। अगर तुम्हें फातिमा जहरा की जियारत करनी है तो बिल्कुल तुम्हारे किनारे में फातिमा मासूमा की जाकर जियारत करो फातिमा जहरा के नाम पर, और इस तलाश को छोड़ो, ये खुदा के राजू में से एक राज है। जब वली खुदा जमीन के अंदर अपने नूर से जमीन को मुनव्वर करेंगे तो ये राज भी मुनकशिफ होगा। लेकिन ये बात भी वाज़ह है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उस रात बास रिवायात के मुताबिक 40, लेकिन अगर हम उन कम रिवायात को भी पेश नजर रखें तो 7 से ज्यादा जगहों पर 7 से ज्यादा कब्रें बनाई थी। आप जानते हैं क्यों 7 कब्रें? अगर कब्र को छुपाना था तो 7 कब्रें बनाने की जरूरत क्यों थी? क्योंकि कुछ लोग थे जो हुकूमत थे, हुक्मरान थे, वो धमकियां दे रहे थे क्योंकि हमें शरीक होने नहीं दिया। इस बात का पूरा खतरा था कि हम जो है कब्र को खोदेंगे और कब्र से जो है जनाजे को निकाल कर फिर से जो है हम जनाजा पढ़ेंगे रात को, या फिर सुबह जब अहले मदीने को मालूम हुआ कि सैदाए कायनात की तदफीन हुई है और रात को ही ये तदफीन हो चुकी है उनकी वसीयत के मुताबिक। बहुत सों ने एक दूसरे को मलामत करना शुरू कर दिया, बहुत से लोगों ने एक दूसरे से ये कहा कि हमने सैदा के हक में अच्छा नहीं किया, वो हमसे नाराज होकर इस दुनिया से चली गई, इसीलिए हम उनके जनाजे में हमें आने नहीं दिया। यहां तक कि बाज हुक्मरानों ने, जो 7 कब्रों का राज है वो ये है कि बाज हुक्मरानों ने बाज औरतों को बुलाकर कहा कि औरतों को लेकर जाएं और कब्र को खोद कर दोबारा जनाजा पढ़ा जाए और हम उस जनाजे में शरीक होंगे। ये वो वक्त था कि मौलाए कायनात को जब इसका इल्म हुआ तो रिवायत कहती है कि आपने तलवार को नियाम से खींचा, जुल्फकार को नियाम से निकाल कर नंगी तलवार लेकर आप बकी में जाके खड़े हो गए, कहा कि बस अब बहुत हो गया, खबरदार जो कोई इसके करीब भी चला आ जाए, खबरदार जो कोई बकी का रुख कर ले। हमें नहीं मालूम क्या बकी में ही कब्र जनाब सैयदा है, या मौलाए कायनात ने पोशीदा रखने के लिए बकी का रुख किया। सात कब्रों में से कुछ कब्रें बकी के अंदर थीं। अजीजों, मैं मुख्तसर करता हूं, गोया कि मौलाए कायनात के कुछ जुमले हैं इस दौरान जब बकी में आप गए हैं, जिसे मुख्तलिफ सहाबियों के जरिए से ये जुमले नकल हुए हैं, और इन जुमलों को अगर हम उर्दू जबान में खुलासा करके डालें तो वो जुमले कुछ यूं बनते हैं कि गोया के मौलाए कायनात कह रहे हों, अरे ओ बदबख्तो, जिसने जिसको तुम लोगों ने जीते जी जीना नहीं दिया, कम अज कम शहादत के बाद तो उसे आराम से चैन से कब्र में रहने दो। बेखुदा, अगर मेरे रसूल की वसीयत मेरे लिए न होती कि अली सब्र से काम लेना, दीन खुदा नाबूद हो जाएगा, तो खुदा की कसम मैं शब गुस्ल सैयदा के वक्त ही मैं नियाम से तलवार को खींच के तुम्हारी तरफ रुख कर रहा था, जब मैंने देखा था कि सैयदा ने अपने पहलू को मुझसे छुपाया था, जिस पहलू के ऊपर कुनफुस ने नियाम में तलवार मारा था, और उसे उसके ऊपर इतना बड़ा निशान और गहरा दाग था कि उसे देखने के बाद मेरी चीखें निकल गई थी। अस्सलामु अलैकि या फातिमत अज़ज़हरा या सैयदत निसाइल आलमीन या बिन्त रसूलिल्लाह या कुर्रत ऐन रसूल या सैयदतना व मौलातना इन्ना तवज्जहना व इस्तशफ़अना व तवस्सलना बिकि इलल्लाह व क़द्दमनाकि बैन यदाई हाजातिना या वजीहतन इंद अल्लाह इश्फ़ई लना इंद अल्लाह। परवरदिगारा परवरदिगारा बिहक़ सैयदए कायनात, हम बंदगाने गुनाहगार हैं, हम बंदगाने खताकार हैं। परवरदिगारा सैयदा के शिकस्ता पहलू का वास्ता, हमारे गुनाहाने कबीरो सगीरा से दरगुजर फरमा।